परिस्थिर लंबा काल घंटों घंटों। तो ये साधनाएं मामा ने प्रारंभ से ही बहुत ज्यादा की, इसलिए सहनशील तो वो पहले भी थी, लेकिन अब आ गई उनमें सहन शक्ति, हर चीज को सहन करने की शक्ति। चाहे उनके शरीर में बीमारी आई, कभी बीमारी तो आ ही जाती है, और फिर यहाँ माउंट आबू में कई तरह की तकलीफें थी, थोड़ा पानी भी हैवी था, सबको तकलीफ हो जाती थी, लेकिन वो सहन शक्ति वाली देवी बन गई, सहनशीलता की मानो देवी बन गई। ऐसे धैर्य चित्त बहुत सभी के लिए, आत्मिक प्यार, और विशेष रूप से जो उनके लिए प्रसिद्ध है वो मैं एक बात सबको कहना चाहूंगा। मान लो किसी दो में, दो कन्याओं में आपस में मनमुटाव हो गया, अब दोनों मामा के पास पहुंची, जैसे बच्चे लड़के माँ के पास पहुंचते हैं ना, तो दोनों ज्यादा लड़ते तो नहीं थे बच्चे, लेकिन थोड़ा बहुत हो गया और पहुंचे मामा के पास, तो एक अपनी बात कहेगा, मामा इसने मुझे ये कहा, दूसरी कहेगी नहीं मामा इसने मुझे ये कहा। तो मामा मुस्कुराते हुए पहले दोनों की बात अच्छी तरह सुन लेती थी, उन्हें दृष्टि देती रहती थी, तो जैसे जैसे वो उनकी सुनती रहती थी आधे वो शांत होते रहते थे, फिर पूछते थे ऐसा पहले किसने कहा, अब दोनों एक दूसरे को देखने लगते थे, फिर वो कहेगी इसने पहले कहा था, अब उसको मानना तो पड़ेगा ही, पहले मैंने कहा था, तो फिर उसको बहुत प्यार से समझाती, बच्चे ऐसे नहीं बोला करते। तो इतने प्यार से वो अपनी बात कहती थी कि उसमें शिक्षात्मक स्वरूप नहीं होता था,
माँ का स्वरूप,
माँ का एक स्वरूप प्यार से, जैसे माँ कहती है उसमें प्यार भी समाया होता है, अपनापन भी समाया होता है, आदेश नहीं, बहुत शुभ भावना, बहुत कल्याण की भावना। इसलिए जल्दी दोनों बच्चे खुश होके वापिस चले, हाँ मामा बहुत अच्छी है, मामा हमें बहुत प्यार करती है। तो देखिए मामा शिक्षा भी दे देती थी और उनको लगता था मामा हमें बहुत प्यार करती है, ये एक बहुत बड़ी चीज,
बहुत बड़ी क्वालिटी की बात है दादा जी, क्योंकि संगठन में जब कभी हमें संभालना हो, बच्चों को संभालना हो स्पेशली, तो इस क्वालिटी का होना बहुत आवश्यक है।
एक नाराज हो जाएगा, एक खुश होगा, लेकिन मामा में ऐसी क्वालिटी थी और ऐसी विवेक शक्ति थी कि दोनों ही खुश होके जाते थे।
धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ, सबसे प्यारी न्यारी माँ जगदम्बा, धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ, सबसे प्यारी न्यारी माँ जगदम्बा, धीरज है तुझ में ओ माँ, सबसे प्यारी न्यारी माँ जगदम्बा, धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ।
सोच लें सभी लोग इस बात पर कितनी बड़ी शक्ति और विवेक उनके पास और शुभ भावनाएं उनके चित्त में रही होंगी कि दोनों ही नाराज नहीं कहते थे मामा तो हमारी है, दोनों ही कहते थे मामा तो हमारी है।
मुझे लगता है दादा जी कि उनकी तपस्या का बल सचमुच इसमें बहुत कार्य करता रहा होगा। और अपने सहनशीलता की बात कही तो मैं भी वो किताब मामा की, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं पढ़ रहा हूं, तो मैंने पढ़ा कि सहनशीलता की देवी के रूप में उन्हें लोग जानते थे, और कई बार जब उन्हें शारीरिक रूप से तकलीफ थी, डॉक्टर आता था देखने भी, तो मामा के चेहरे से लगता ही नहीं था कि जैसे वो बीमार हैं, और उन्हें जो अटेंड करने वाली बहन होती थी कई बार उन्हें डॉक्टर पेशेंट समझ लेता था कि हाँ बोलो कि तुम्हें क्या तकलीफ है। तो ये एक बहुत बड़ी खासियत और बहुत बड़ी विशेषता है।
मामा जब चलती थी, चलना बहुत रॉयल, बहुत रॉयल
जी,
मुस्कुराती थी जोर से, तो मामा को किसी ने हंसते नहीं देखा जब से वो योगिनी बनी थी। मुस्कुराती थी तो माना फूल बिखरते थे चारों ओर, लोगों के गम दूर हो जाते थे। ऐसा नहीं मामा यहाँ बोल रही और आवाज दूर दूर तक जा रही है, ये नहीं। और चौथी बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के लिए संपूर्ण डेडिकेटेड, संपूर्ण आज्ञाकारी, जो उन्होंने कह दिया बस वही करना है, उसमें नो क्वेश्चन। अधिकतर बुद्धिमान लोग क्वेश्चन उठाया करते हैं, लेकिन वो बुद्धिमान थी, उनके साथ एक शब्द और जोड़ा जाएगा, वो दिव्य बुद्धि से संपन्न थी। और जो दिव्य बुद्धिमान मनुष्य होता है, ये योगियों की क्वालिटी, ये देवियों की क्वालिटी है। वो क्वेश्चंस तेरा मेरा, अपनी बुद्धि का दिखावा, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ये सब वो नहीं किया करते। तो मामा बहुत बुद्धिमान थी और उनकी बुद्धिमानी यही थी जो भगवान ने कह दिया वही अंतिम सत्य, हमें वही करना है।
बाबा की अरमा को पूरा किया, बच्चों को प्यार पा दिया। बाबा की अरमा को पूरा किया, बच्चों को प्यार पा दिया। माँ तुझको निहारती हर आत्मा, धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ, सबकी प्यारी न्यारी माँ जगदम्बा। धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ, सबकी प्यारी न्यारी माँ जगदम्बा।
इतनी बड़ी क्वालिटी हो जाती है कि हाँ जी करके इस कार्य को आगे बढ़ाना। और उन्होंने जो भी कह दिया, और वैसे ही परमात्मा ने जो कहा है उसमें तो कितना बड़ा कल्याण होगा। और सचमुच ये ज्ञान ही दिखाता है, उनका निश्चय दिखाता है कि वो हर चीज को एक्सेप्ट करके इस बात को चलती थी। माता जी, आपने पहले एक बात कही थी, अब तक मैं जगदम्बा सरस्वती कह के मातेश्वरी को पुकार रहा था। आपने कहा कि जैसे परमात्मा ने साक्षात्कार करा दिया कि भविष्य में आप ही जाके लक्ष्मी बनने वाली हैं, तो क्या जिस लक्ष्मी माँ की हम पूजा कर रहे हैं मंदिरों में, जिनसे हम धन मांग रहे हैं, क्या मातेश्वरी ही लक्ष्मी बनने वाली
है? बिल्कुल यही बात शिव बाबा ने उन्हें बता दी थी और सबको बता दी थी कि ये जो अब सरस्वती है, क्योंकि इसने बहुत बड़ा त्याग कर लिया, ज्ञान का खजाना अपने अंदर संपूर्ण भर लिया, महान तपस्या कर ली, ज्ञान खजाना ही भविष्य में स्थूल खजानों के रूप में प्राप्त हो जाता है। वर्तमान का ज्ञान का खजाना जिसके पास जितना है, भविष्य में स्थूल खजाना उसके पास उतना ही है। तो ज्ञान का खजाना इनके पास ही सबसे ज्यादा था, हमारे पास भी बहुत है, पर जब मामा की बात सुनते हैं तो हमें लगता है हमारे पास बहुत कम है, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो इसलिए वो धन की देवी बन गई, लोग उनसे धन की कामना करने लगे। मुझे कुछ और बात भी याद आ रही है, उनके जीवन में कुछ बहुत सुंदर घटनाएं भी हुई जो उनके गुणों को प्रत्यक्ष करती थी। मामा जहां तहां सेवाओं में जाती थी, विरोधी लोग भी तो होते ही हैं। अमृतसर में एक बार थी तो कुछ विरोधी लोगों ने मामा का बहुत ज्यादा विरोध किया और वो आ गए हंगामा करने, जो हमारा छोटा सा आश्रम था वहां पर। मामा बाहर निकली बहुत निर्भयता के साथ, उन सबको देखा और मुस्कुराई। बस इस मुस्कान ने सभी के जो विरोध थे ना, गुस्सा, उसको ठंडा कर दिया। उन्हें लगा चाहे ज्ञान में कितना भी डिफरेंस हो, देखो फिलोसॉफिकल डिफरेंस तो रहता ही है ना, किसी के विचार कुछ होंगे, लेकिन ये सचमुच देवी है। चलो हम इनकी कुछ ज्ञान की बातों से सहमत नहीं हैं, पर ये है बहुत महान। तो ऐसी घटनाएं कई बार मामा के साथ हुई। एक और घटना जो मैं कहना चाहूंगा, कई बार मामा की परीक्षा लेने के लिए दूषित वृत्ति से भी लोग उनके सामने आ जाते थे। ये भी हुआ कई बार कि भाई सुना है इनकी मामा बहुत पवित्र है, वो तो देवी है, हम चल के देखते हैं कैसी वो देवी है। आ जाते थे दूषित वृत्तियों से, जैसे शास्त्रों में भी है ना, देवियों के आगे राक्षस लोग, असुर लोग दूषित वृत्ति से आ जाते थे और देवी उन्हें पहचान लेती थी। तो बिल्कुल यही होता था, वो आ रहे हैं, सब लोग मिलते थे, वो भी उनमें हैं, उन पे जैसे ही दृष्टि गई, मामा कहती थी वहीं ठहर जाओ, अपनी वृत्तियों को पवित्र करो, तब माँ के पास आ सकते हो। अब बेचारा वो तो हैरान हो जाता था, इसने तो जान लिया मुझे, वहीं से नतमस्तक हो जाता था।
ऐसे करे हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का, प्यार देकर अर्थ समझाया है सच्चे प्यार का। ऐसे करे हम
प्योरिटी का तेज उनके साथ ईश्वरीय बल, उनको अंदर ही अंदर बहुत सारे वरदान भी प्राप्त थे, क्योंकि मामा बहुत गुप्त अपने को रखा है, उसने अपनी सारी चीजों का वर्णन नहीं किया। आज तो लोगों के पास जरा सिद्धि आ जाए तो 100 जगह बताएंगे मेरे पास ये आ गया है, लेकिन मामा ने अपनी शक्तियों को बिल्कुल गुप्त रखा था, लेकिन उनके इस तरह के व्यवहार से ये चीजें प्रत्यक्ष होती थी। तो ऐसी अनेक घटनाएं मामा के साथ होती रही जिसमें उनकी संपूर्ण प्योरिटी बिल्कुल प्रख्यात होती थी, उनकी निर्मलता, उनके मन में जो सबके लिए शुभ भावनाएं थी वो उन लोगों को भी शांत कर देती थी जो विरोधी होते थे। इसलिए बाबा हमेशा जहां कहीं भी सेवाओं में विरोध हो रहा, हमारी बहनें गई हुई हैं, तो मामा को भेजते थे, मामा वहां तुम जाओ, पर बस मामा के जाने से बहुत जल्दी
शांत हो जाते थे। मतलब जैसा हमारा मंच है भ्राता जी, हमारा कार्यक्रम है समस्या से समाधान की ओर, तो मामा समाधान स्वरूप थे विशेष। और भ्राता जी 1937 से लेके 1965 तक जब मामा अव्यक्त हुई, पूरी यज्ञ का संचालन उन्होंने किया, इतने सारे सेवा केंद्र थे, निश्चित रूप से समस्याएं तो आती रही होंगी, ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या विशेष मामा का अप्रोच रहता था, कैसे वो सॉल्व करती थी, उनकी मानसिकता क्या रहती थी, और कैसे लोग इतनी जल्दी समझ जाया करते
थे? जैसा मैंने उनको अपने दिव्य विवेक से देखा, मैंने सुना भी बहुत था उन, क्योंकि हम छोटे थे और मामा की तो बहुत चर्चाएं हुआ करती थी बाबा के समय भी और बाबा के जाने के बाद भी। जैसे बाबा की चर्चाएं होती थी, मामा की चर्चा भी थी, और मामा के साथ जो उनकी ब्राह्मणी हम कहते हैं जो उनकी सेवा में रहती थी वो भी थी। हमारे उन साथ वो 20 साल तक रही, वो भी हमें बहुत चीजें सुनाया करती थी। तो वास्तव में यज्ञ को अनेक कठिनाइयों से तो गुजरना पड़ा, और समझो दो ही थे, या तो बाबा या मामा, उनको ही फेस करना है सब कुछ। इतना बड़े संगठन को लेकर चल रहे हैं, वहाँ भिन्न भिन्न संस्कारों वाली आत्माएं भी थी, कुछ छोटे बच्चे आ गए थे, अब जो वो बड़े होने लगे उनमें कई इच्छाएं कई वासनाएं भी जागृत होने लगी, उनको भी मामा ने बहुत अच्छी तरह संभाला। लेकिन यज्ञ में बहुत सारी कठिनाइयां शुरू से आई। जब यज्ञ शुरू हुआ 37-38 की बात है, 38 की ये बात है, तो किसी ने बाबा पर केस कर दिया कि बाबा तो ये करता है, कन्याओं को भगा रहा है, अनेक उल्टी सुलटी बातें बाबा के विरुद्ध की
जी।
कोर्ट केस हो गया, तो बाबा ने मामा को भेजा था। अब मामा तब छोटी थी, 17 साल की, और जज है, दोनों ओर के वकील हैं, और जज जो है मामा से कुछ कुछ पूछ रहा है, और मामा की निर्भीकता के आगे वहां सभी नतमस्तक हुए, और वो केस लंबा चला ही नहीं। मामा ने बिल्कुल निर्भयता पूर्वक अपने तर्क दिए कि क्या कोई एक व्यक्ति इतने लोगों को भगा सकता है, क्यों ये सब लोग भाग रहे हैं, क्या बाबा अब से पहले नहीं था, उनके पास ये पावर कहाँ से आ गई। स्पष्ट कर दिया उनके तन में निराकार परमात्मा आते हैं, वो सबको अपनी ओर खींच रहे हैं, उसने पवित्र बनने का संदेश दिया है। ये दादा कौन होता है सबको पवित्र बनने की बात कहने वाला, इसमें वो कहाँ ताकत है, वो तो स्वयं ग्रस्थी था, स्वयं भगवान ने आकर कहा काम मां शत्रु है इसको जीतो। तो ये अनेक कन्याएं माताएं और पुरुष भगवान के आह्वान पर आए हैं। अब जज भी देखने लगा, और जब ये बताया भगवान का आदेश है तो भगवान के नाम से तो सभी घबराते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, वहीं सब कुछ क्लियर हो गया। एक बहुत पावरफुल स्वरूप, बहुत निर्भयता, ब्रह्मचर्य की शक्ति उसी समय मामा की देख ली थी सबने, सब खेल वहां समाप्त हो गया। फिर 13-14 साल के बाद आया बेगरी पार्ट। बेगरी पार्ट हम उसे कहते हैं, अभी यज्ञ चल रहा था, 400 लोग खाने वाले, अभी सोर्स ऑफ इनकम तो कहीं से था नहीं, वो धन संपदा सब समाप्त हो गई बाबा की और जिन लोगों ने लगाई थी, अब कुछ भी नहीं रहा। ये एक ऐसा समय था 4-5 साल का जो सभी के लिए एक अग्नि परीक्षा थी। उसमें मामा ने कैसे सबको धैर्य दे के रखा, बाबा ने बहुत काम किया, लेकिन मामा से सब बात करते थे ना, बाबा के पास तो सब जाते भी नहीं थे, बाबा बुजुर्ग भी थे और बाप से तो बच्चे,
माँ के पास जाना ज्यादा सहज होता है,
जिसकी जो कठिनाई हुई वो मामा के पास, भूख लग रही मामा, दवाई नहीं है, ये बीमारी हो गई है, मामा सबको शांत करती थी। और ऐसी अनेक घटनाएं हुई जब पैसा नहीं है, लूज मोशन हो गए सबको, कई तरह की बीमारी हो गई, ठंड थी आबू में बहुत, कपड़े लाए नहीं थे इतने, पैसा था नहीं। शिव बाबा ने ऊपर से कहा ये खिला दो, और वह सबको खिलाया और बीमारियां ठीक हो गई। तो उस काल में भी मामा ने बहुत धैर्यता का परिचय दिया, बहुत समझदारी से सबको सहारा दिया। देखिए मेंटल सपोर्ट बहुत बड़ी चीज होती है, उसके द्वारा सभी स्थिर रहे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि फिर मामा को कुछ बीमारियों को फेस करना पड़ा, लेकिन जैसे आप भी कह रहे थे ये बिल्कुल सत्य था। हम तो तभी आ गए थे और भोली दादी जो किचन की इंचार्ज थी, जिसका मामा से गहरा कनेक्शन रहता था, सुनाया करती थी कि मामा को कुछ काफी तकलीफें भी हुई, लेकिन मामा के चेहरे पर कभी कोई बीमारी की झलक दिखाई नहीं देती थी। वो कराह रही हो, उसको कुछ पेन फील हो रहा हो, या उसके मन में कुछ परेशानी हो रही हो, वो बाबा बाबा कर रही, ये भी नहीं। चित्त शांत धैर्यवत, जैसे ये शरीर के कर्म भोग हैं, शरीर भोग रहा हो, मैं इससे मुक्त हूँ, ऐसी योग की श्रेष्ठ स्थिति उन्होंने प्राप्त की थी। और अंत में सेवा करते हुए सबको अंगूर खिलाकर, अंगूर लगे थे पहली बार मोटे मोटे वो अंगूर, सबको वो बांटकर, फिर ऐसा ही मैं कहूंगा जैसे स्वेच्छा से देह का त्याग किया था।
जो भी है मेरा आपको उसकी है बड़ी जोड़ी है, आज उन्हें अंतिम अंगूरों की वो डोली, जो आपके संग बीते याद लम्हे वो तमाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का नाम, ममता कितनी वो
कष्टों से नहीं, परेशानियों से नहीं। बहुत जैसे कई योगी हो जाते हैं ना, हॉस्पिटल में पड़े हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं, ये हो रहा है,
और वैसे भी तपस्वियों की निशानी ही यही है बेटा जी। और इनका मातेश्वरी जी का पूरा जीवन ही त्याग और तपस्या से जुड़ा हुआ था, तो निश्चित रूप से उनका जो अंत था वो भी तो महान होगा, दूसरों के लिए प्रेरक होगा ही। मैं विशेष करके जानना चाहूंगा बेटा जी अंत में, कि क्या विशेष शिक्षाएं देकर के मातेश्वरी जी गई हैं सारे समाज को, सबके कल्याण के लिए, ताकि सभी लोग सुखी हों, शांत हों और अपने जीवन को पावन बनाए। उनकी
मैं अपने दर्शकों को कहूंगा कि वो केवल हमारी मम्मा नहीं, वो तो जगत की अम्मा है, मम्मा है, सभी उसके बच्चे हैं, यही उनकी सबके लिए दृष्टि थी। इससे सभी उनके जीवन से यही सीखें कि हमें अपने चित्त में सभी के लिए निर्मल प्यार रखना है, बच्चे और बच्चियों में कोई भेद नहीं करना है, सबको समान रूप से पालना करनी है, सबकी सुननी है, सबको संतुष्ट करना है, सबको प्रेम बांटना है, अपने चित्त में धैर्य को धारण करना है, सहनशीलता की देवी बनना है, और महान योगिनी बनकर मामा का स्वरूप अपने स्वरूप में दिखाना है। जैसे बच्चों में माँ दिखाई देती है, हम सोचें जिसकी माँ इतनी महान हो वो बच्चे कितने महान होंगे, यही संदेश हम सब के लिए है। तो हमारी उनकी इस पुण्यतिथि पर यही शुभ श्रद्धांजलि होगी कि उनकी तरह हम भी महान बने और अपने जीवन से उनका स्वरूप दिखाएं।
जी जी जी, वैसे कहा जाता है दादा जी आपकी बात से लग रहा है, और मामा के लिए विशेष शायद किसी कवि ने कहा होगा कि पर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं। तो सचमुच मातेश्वरी जगदम्बा जी के बारे में जब आप बातें कर रहे हैं तो लग रहा है कि इसका कहीं कोई अंत ही नहीं है। जितना हम सुने और जितना धारण करें सचमुच हमारा जीवन उतना श्रेष्ठ बनेगा। आपने सुंदर प्रकाश मामा के जीवन चरित्र पे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रता जी। मित्रों, परमात्मा के लिए कहा जाता है कि यदि सागर को स्याही बना लिया जाए, जंगल को कलम बना लिया जाए और पूरी वसुधा को ही कागज बना लिया जाए, फिर भी उनकी महिमा नहीं लिखी जा सकेगी। इतनी अपरंपार महिमा है परमात्मा की। वैसी ही महिमा सचमुच मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की भी है, जिनका जीवन त्याग से, तपस्या से परिपूर्ण रहा, जिन्होंने मानव जाति की सेवा की, जिन्होंने अपने जीवन से बस दिया ही दिया, अंत तक तक भी देती रही वो सभी को। और आज उनकी पुण्यतिथि पे जैसे भ्राता जी कह रहे थे कि हमें यही सीखना है कि जैसे उन्होंने परमात्मा के लिए अपना जीवन दिया, संसार के लिए अपना जीवन दिया, सबकी सेवा की और अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ, इतना महान बनाया, दिव्य गुणों से संपन्न बनाया, हम भी अपने जीवन को उसी महानता के पथ पर लेकर चलें। जैसे हमारे पूर्वज होते हैं वैसे ही हमें भी होना चाहिए ना, क्योंकि हमारे पूर्वजों के लिए हमारी सच्ची आस्था, निष्ठा या सम्मान यही है कि उनके गुणों को, उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को हम भी अपने जीवन में धारण करें। आज विशेष मम्मा का पूरा जीवन तो सागर के समान है, हमने उसे गागर में समाने की कोशिश की और उनके जीवन चरित्र को मैं स्वयं भी पढ़ रहा हूँ, बहुत ज्यादा अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, अंतर से प्रकाशित अनुभव कर रहा हूँ। आप सबसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार इस आद्य शक्ति जगत जननी के जीवन चरित्र को आप भी अवश्य पढ़ें, आपको लगेगा कि सचमुच ये जीवन कितना महान जीवन था उनका और हमें भी अपने जीवन को ऐसे ही श्रेष्ठ और महान बनाना चाहिए। तो आप महानता के पथ पर आगे बढ़ें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।
एक प्रभु से हो रिश्ता, बन के फरिश्ता दिखाया, नाज है जग को तुम पर मां, तुझ में लक्ष्मी रूप पाया। एक प्रभु से हो रिश्ता, बन के फरिश्ता दिखाया, नाज है जग को तुम पर मां, तुझ में लक्ष्मी रूप पाया। यादगार ये कल्प कल्प की इतिहास फिर दोहराया, ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया, ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया। तेरी मुस्कान रूहानी कहती तेरी कहानी, तेरे आंचल की छाया में हो, तेरे आंचल की छाया में सुख ही सुख पाया। ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया।